ओम शांति। एक छोटे से तालाब में तीन मछलियां थी। एक का नाम था बुद्धि, दूसरी का नाम था अर्धबुद्धि और तीसरी का नाम था अबुद्धि। वो तीनों मछलियां बहुत खुश थी उस तालाब में, जब तक एक मछुआरा वहां ना आ जाए। एक मछली पकड़ने वाला व्यक्ति, एक मछुआ उस तालाब के पास आता है अपना बहुत बड़ा जाल लेकर। तो जो तीन मछलियां होती है थोड़ा सा डर जाती है। पहली जो मछली होती है बुद्धि, वो सोचती है कि अब बचना मुश्किल है। तालाब छोटा, शिकारी का जाल बहुत बड़ा, तो वो एक युक्ति लड़ाती है और उछल जाती है तालाब के बाहर और उस मछुआरे के पैर में जाकर गिर पड़ती है। उस मछुआरे को आश्चर्य होता है, ये कैसी मछली है जो खुद ही उछलकर मेरे पैरों के पास गिर गई। तो वो मछुआरा उस मछली को उठाता है और देखता है ये तो मरी हुई मछली है, ये मछली तो मर चुकी है। वो मछली अपनी श्वास बंद कर देती है, तो उसे लगता है मरी हुई मछली का मैं क्या करूं, और वो उस मछली को वापस फेंक देता है तालाब में। जो दूसरी मछली होती है अर्धबुद्धि, जो पहली मछली होती है उसकी अनुयायी फॉलोअर, वो सोचती है कमाल है, मनुष्य के हाथ में जाकर भी ये मछली बच गई, तो मैं भी ऐसी ही करूंगी। तो वो मछली भी उछलकर उस मछुआरे के पैरों के पास गिर जाती है। पर जो पहले मछली ने किया था इसका इसे कोई पता नहीं। पहले मछली ने अपनी श्वास बंद कर ली थी, इसकी श्वास चालू थी। मछुआरे को बहुत आश्चर्य होता है, ये कैसी मछलियां है जो खुद उछल उछल कर मेरे पैरों के पास आ रही है। वो उस मछली को उठाता है और देखता है इसकी श्वास तो अभी चालू है, और वो उसको अपने थैले में डाल देता है, क्योंकि फॉलो तो किया था, अनुयायी तो वो थी, पर बुद्धि नाम के मछली ने जो किया था वो इस फॉलोअर को कुछ भी पता नहीं था। फॉलोअर्स केवल बाहर का देखते हैं अनुयायी, पर अंदर जो साधना गुरु ने की होगी वो शायद उन्हें पता नहीं। बाहर का आवरण देख लिया परंतु अंदर क्या था वो पता नहीं। जीसस क्राइस्ट के शिष्य ने, क्राइस्ट ने ऊपर से किया था वो देख लिया, पर क्राइस्ट ने आंतरिक क्या साधना की थी शायद उनका उन्हें कोई पता नहीं। गुरु नानक जी ने ऊपर से जो कपड़े पहने थे शायद अनुयायियों ने वो पहन लिए, पर अंदर क्या साधना चालू थी, अंदर क्या संकल्प थे उसका उन्हें कोई पता नहीं। महावीर के शिष्यों ने, सन्यासियों ने, बुद्ध के सन्यासियों ने शायद बुद्ध जैसी वेशभूषा बना ली, पर अंदर बुद्ध की, अंदर महावीर की क्या साधना चालू थी शायद उसका उन्हें कोई पता नहीं। दूसरे नंबर की मछली उस थैले के अंदर चली गई, परंतु मछुआरा इतना आश्चर्यचकित था मछलियों का यह खेल देखते हुए कि वो थैला, उसका मुंह बंद करना वो भूल गया। और जो मछली अंदर चली गई थी उछल कर वापस पानी में चली गई, तालाब में चली गई, तालाब के तलहटी में बुद्धि नामक मछली के साथ। तीसरी जो मछली होती है अबुद्धि, वो दूसरी की फॉलोअर होती है, अर्थात फॉलोअर की फॉलोअर, अनुयायी की अनुयायी। तो वो बिना कुछ सोचे सोचती है कि मुझे भी यही करना चाहिए, और वो भी उछलकर उस मछुआरे के पैरों पर जा गिरती है। मछुआरा उसे उठाता है और बिना ये देखे कि श्वास चल रहा है या नहीं चल रहा है, सीधा अपने बैग में डाल देता है और बैग को बंद कर देता है। पहली जो थी उसने बुद्धि का प्रयोग किया, तर्क किया, उसकी अपनी विचार शैली, अपनी जीवन धारा, अपने सोचने का ढंग, अपना पुरुषार्थ। दूसरी जो थी वो केवल फॉलो करने वाली, अनुकरण, अनुगमन करने वाली, अनुगमन की इस यात्रा में वो फंस गई, पर भाग्य अच्छे थे कि निकल गई। पर जो तीसरी थी वो तो पूरी ही फंस गई, जो अबुद्धि थी। मनुष्य कौन है, जन जन से फॉलो करता चला आ रहा है मनुष्यों को, गुरुओं को, उनको भी नहीं उनके फॉलोअर्स को, उनको भी नहीं उनके फॉलोअर्स को, उनके उनको भी नहीं उनके अनुयायियों को। और जो सत्य है इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में कहीं खो गया। फॉलो क्या करना, फॉलो किसे करना, व्यक्ति बिना फॉलो किए नहीं रह सकता, बेचैनी होती है, उसे आधार चाहिए। कैसे फॉलो करना, किसको करना चाहिए, किस विधि से करना, ये उसे पता नहीं। और वो करे जा रहा है और फंसता जा रहा है। जबकि पहली मछली ने भी जो किया, तीसरी ने भी वही किया, पर उसे ये नहीं पता था कि अंदर क्या साधना चालू थी। फॉलो करने की यह प्रोसेस, अनुकरण, अनुगमन, अनुसरण करने की यह प्रोसेस कैसी हो, किसको करे, उसकी शिक्षाएं भगवान आकर इस धरती पर देते हैं। वो जो अनुकरण तुमने आज तक किया वो वैसा ही अनुकरण था जैसे एक सन्यासी तपस्या में बैठा हुआ है किसी जंगल में और अचानक आवाज सुनता है शोरगुल, क्या हुआ? वो देखता है एक भालू भाग रहा है। इस भालू से पूछता है क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? वो कहता है अरे भागो, दुनिया का अंत होने वाला है। वो कहता है क्या, दुनिया का अंत? वो कहता है हाँ, सभी भाग रहे, सारे जंगल में हड़कंप, सारे जंगल भाग रहा है, भागो भागो भागो। क्यों भागो? क्योंकि दुनिया का अंत होने वाला है। सन्यासी को आश्चर्य होता है क्या हुआ। वो और पीछे जाता है तो देखता है शेर भी भाग रहा है। शेर को पूछता है कहाँ जा रहे हो? शेर कहता है दुनिया का अंत होने वाला है, क्यों रुके हो, भागो भागो भागो। आश्चर्य होता है। और पीछे मुड़ता है तो हाथियों का झुंड भाग रहा है, क्यों भाग रहे हो? दुनिया का अंत समीप है, किसने कहा? वो कहता है देखो पीछे खरगोशों की टोली जा रही है, उन्होंने कहा दुनिया अंत होने वाली है, भागो भागो भागो। सन्यासी खरगोश को रोकता है सभी और कहता है किसने कहा दुनिया का अंत होने वाला है? तो सब एक दूसरे की तरफ देखते रहते और एक छोटा सा खरगोश पीछे होता है, वो कहता है मैंने कहा। सन्यासी पूछते तुझे कैसे पता चला दुनिया का अंत होने वाला है? वो कहता है हमने पूर्वजों से, पुरखों से सुना है कि जब बहुत धड़ाम से आवाज हो जाए तो समझना दुनिया का अंत हो रहा है। और मैं दोपहर की नींद कर रहा था तब एक धड़ाम से आवाज हुई। कहां पर आवाज हुई? तब मैं एक आम का झाड़ था उसके नीचे बैठा था। सन्यासी कहता है मुझे ले चलो और दिखाओ। तो जाकर देखता है तो सन्यासी कहता है कहीं वो आम तो नहीं था जो झाड़ से गिरा। खरगोश कहता है हो सकता है। क्या कहा? हो सकता है शायद आम ही गिरा हो, पर जो एक ने किया उसके पीछे सारे करने लग पड़े। इसी का नाम संसार में धर्म कहा जाता है। किसी ने एक चित्र भेजा था, धर्म अर्थात एक चित्र था। धर्म अर्थात एक व्यक्ति है जो अंधा है, उसके पीछे एक दूसरा व्यक्ति हाथ पकड़े है, उसको किसी और ने ऐसे पकड़ा है, ऐसी एक कतार लगी हुई है, ये है धर्म। तो सारे संसार में अंधा अनुकरण अनुगमन अंधा अनुकरण चल रहा है। वास्तव में आज कहा ना सुबह सब दरवाजे बंद है। यह संसार क्या है? संसार क्या है? साकार मुरली, भूल भुलैया का खेल। सब भटक रहे और दरवाजा बंद है, किसी को कुछ पता नहीं। एक दूसरों को फॉलो किए जा रहे हैं, एक दूसरों के पीछे भागे जा रहे हैं, वही किए जा रहे हैं जो किसी और ने कहा। उसको किसने कहा? किसी और ने, किसी और ने, किसी और ने। और सत्य इस दौड़ में, इस रेस में कहीं ना कहीं खो गया। तो इन दो घटनाओं के साथ आज की चर्चा शुरू करते हैं। संडे की अव्यक्त मुरली, ब्रह्मा बाप की एक आश। कौन सी आश? कौन सी आश? बाप समान बनने की आश। कौन सी आश? बाप को कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करने की आश। कौन सी आश? कर्म तुम्हारे दर्शन बन जाए, दर्पण बन जाए, जिसमें बाप का साक्षात्कार हो, यह आश। कौन सी आश? तुम हरेक कर्मयोगी बन जाओ, तुम हरेक फरिश्ता बन जाओ, तुम हरेक बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन जाओ, तुम हरेक बाप समान, तुम हरेक रूहानी, रूहानी, रूहानी चित्रकार बन जाओ। कौन सा चित्र खींचो और कहां पर खींचो? चित्रकार चित्र मनुष्यों के मन पर, बुद्धि पर, दिल पर। बाप के स्वरूप का चित्र मनुष्यों के हृदय में खींचना। तो इस मुरली को हम 8 भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहली बात, मुरली की शुरुआत, चार्ट। सबसे पहली बात चार्ट। तो बाबा ने क्या देखा? चार्ट देखा, चार चीजों का चार्ट देखा। कौन कौन सी चार चीजें? कौन सी चार चीजें? कितना घंटा हो गया मुरली चलकर? ज्यादा टाइम हो गया। हाँ बात इसलिए, तो कौन सा चार्ट चेक किया बाबा ने? याद का चार्ट, सेवा का चार्ट, बाप समान बनने का चार्ट, और चौथा कौन सा फल बने हो इसका चार्ट। 7 प्रकार के फल गिनाए। सबसे पहले तो चार्ट चेक किया आज बाप दादा। क्या चेक कर रहे? चार्ट चेक कर रहे याद का। हरेक के याद करने की विधि अपनी अपनी है, हरेक अपने अपने तरीके से और अपने अपने स्वरूप से बाबा को याद करता है। हम ये नहीं कह सकते कि जिस रीति से मैं याद करता हूं वही यथार्थ याद है। सैद्धांतिक रूप से वो ठीक हो सकती है, परंतु कोई ऐसा हो सकता है जिसे विधि पता नहीं परंतु प्रेम बहुत ज्यादा है, और उस प्रेम में इतना डूबा हुआ है कि उसकी वो प्रेम ही याद की यथार्थ विधि है। इसलिए हर व्यक्ति ये सोचता है सूक्ष्म में कि योग की हमारी विधि शायद सही है, क्योंकि ये इस तरह बैठे हैं और क्योंकि इस तरह इनको नींद आ रही है और क्योंकि जिस ढंग से ये याद कर रहे हैं वो यथार्थ नहीं है, शायद इसलिए भी कि इनकी ज्ञान की समझ कम है, भाषा की समझ कम है, बुद्धि की समझ कम है, तार्किक बुद्धि कम है, इसलिए शायद ये यथार्थ याद नहीं कर सकती। परंतु उसके दर पर याद की एक ही विधि है और वो है प्रेम। जो प्रेम से उसे याद करता है वही यथार्थ विधि है, संपूर्ण प्रेम, दिल का प्रेम, सर्वोच्च प्रेम। जो गुप्त रीति से याद करता है, बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, When you pray to the Lord, go to your room, close the door, and in that silence, pray to the Lord, and the Lord shall see you in secret, and shall reward you for your remembrance in secret. जब तुम्हें भगवान की प्रार्थना करनी हो तो अपने कमरे में जाओ, कमरा बंद कर दो ताकि कोई तुम्हें न देखे, और वहां बैठकर उस परमात्मा प्रभु की याद करो। फिर वो प्रभु, द वन हु इज इनविजिबल, वो जो अदृश्य है, तुम्हें तुम्हारे याद का रिवॉर्ड देगा। तो बाबा ने कौन सा चार्ट चेक किया? याद का चार्ट सबसे पहला। कौन कितना याद कर रहा है, इससे भी ज्यादा कौन कितनी लगन से याद कर रहा है, कौन कितनी सच्चाई से, सफाई से, ट्रांसपेरेंसी से, किसका हृदय कितना स्वच्छ है, पारदर्शी है, मिलावट कम है, वो याद का सौदा, वो सच्ची याद वो देख रहा है। अनएडल्ट्रेटेड रिमेम्बरेंस, अव्याभिचारी याद। तो अपनी याद को शुद्ध करते जाना, अपनी याद में जो मनुष्यों की याद का की मिलावट है उसको दूर करते जाना। शुद्ध याद, नीट सॉल्यूशन। सबसे पहला चार्ट याद का, दूसरा सेवा। हरेक जो भी सेवा कर रहा है उस हरेक सेवा की आवश्यकता है। हम ये नहीं कह सकते कि जो सेवा मैं कर रहा हूं या जिस रीति से मैं सेवा कर रहा हूं वही यथार्थ है या सर्वोच्च है या सर्वश्रेष्ठ है। इस यज्ञ में हरेक की आवश्यकता है, वो जो सफाई कर रहा है, वो जो झाड़ू लगा रहा है, वो जो सबसे निम्नतम सेवा कर रहा है, जिसमें कहीं रिकॉग्निशन नहीं, कहीं नाम नहीं, जो जिसको कोई जानता नहीं, परंतु सेवा का संबंध उस एक्टिविटी, उस कार्य, उस डीड, उस एक्शन से कम, भाव से अधिक है। चाहे कोई बाथरूम साफ कर रहा हो और कोई लाखों करोड़ों के आगे भाषण दे रहा हो, दोनों सेवाओं में ज्यादा अंतर नहीं है, परंतु सेवाएं यदि अपने साथ अहंकार को लाए तो वहां पर सेवाओं के मार्क्स स्वतः ही कट हो जाते हैं। जो भी सेवा अपने साथ अहंकार को लाए, जो भी सेवा ये दिखाए कि मैं कुछ हूं और मैं कुछ कर रहा हूं और मैंने ये किया और मेरे बगैर ये नहीं हो सकता था और मेरे जैसी सेवा और दूसरा कोई नहीं कर सकता, यह भाव, यह मनोदशा, यह भाव दशा ही गिरने का साधन है। इसके लिए सेवाओं के फील्ड में, सेवाओं के क्षेत्र में अपनी सेवाओं को निष्काम करते जाना। कर दिया और भूल गए, कर दिया और छोड़ दिया, उन सेवाओं से भी डिटैचमेंट। नहीं तो बहुत अच्छी सेवा की, उससे अटैचमेंट लगाव हो जाता है, उसी को व्यक्ति याद करते रहता है। सेवा की प्रशंसा, स्तुति, एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, नाम मिला और इनको पकड़ लेता है और इनके बारे में सोचते रहता है, डे ड्रीमिंग, यही बंधन बन जाता है। सेवा बहुत अच्छी थी, निष्काम भी थी, परंतु उसका जो परिणाम है वो बंधन का कारण बन जाता है। सेवा से भी डिटैच और उसके परिणाम से भी डिटैच्ड। व्यक्ति किससे ज्यादा सीखता है, सक्सेस से या फेलियर से? सफलता से ज्यादा सीखता है या असफलता से? सफलता किसी को बहुत मिली वो ज्यादा सीखा हुआ है कि जिसको असफलता ज्यादा मिली वो सीखा हुआ है? जिसने गलतियां ज्यादा सीखा की है वो ज्यादा एक्सपीरियंस है कि जिसने कोई भी गलती नहीं की उस वो ज्यादा एक्सपीरियंस है? इसका मतलब ये नहीं कि गलतियां करो। पर सब कुछ करने के बाद भी गलतियां होती है तो रुक कर अपनी गलतियों से सीखना और फिर आगे बढ़ना। तो याद का चार्ट चेक किया, सेवा का चार्ट। इसके लिए किसी की भी सेवा को कम ना समझना, और यदि सेवा में कोई आगे जा रहा है, यदि सेवा में किसी और को सफलता मिल रही है तो यहां आग ना लगे ईर्ष्या की। हर आत्मा वही पा रही है, हर आत्मा को वही मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए, जो उसका अधिकार है, जो उसके पुण्य कर्मों का फल है, जो उसके पास्ट के, अतीत के जो कर्म है उसका ही वो परिणाम अब भोग रहा है, प्रारब्ध। इसलिए किससे ईर्ष्या? जो आगे जा रहा है वो भी इसलिए जा रहा है कि जरूर कुछ तो साधना की है, कुछ तो तपस्या की है, एकांत में, इस जन्म में, किसी और जन्म में, उसका ही यह प्रतिफलन रिजल्ट है। तो बाबा ने याद का चार्ट देखा, सेवा का चार्ट देखा, तीसरा बाप समान कितने बने हैं यह चार्ट देखा, और चौथा चार्ट देखा फल कौन से बने हो। सात प्रकार के फल गिनाए, कौन कौन से? सबसे पहला प्रत्यक्ष फल, इंस्टेंट फ्रूट। दूसरा सीजन के फल। तीसरा कच्चे फल। चौथा पक्के फल, रंग रूप रस। सात फल गिनाए। सबसे पहला है प्रत्यक्ष। इस मुरली में बाबा कह रहे तुम फल कितने बने हो। हमेशा कहते तुम्हें फल मिला है, अभी कहा तुम ही फल बने हो, तुम ही फल हो। पर एक जगह ऐसा भी कहा है तुम्हें प्रत्यक्ष फल मिला है। दोनों चीजें कही है। प्रत्यक्ष फल अर्थात तुरंत मिलने वाला फल। कौन कौन से प्रत्यक्ष फल है ब्राह्मण जीवन के? इंस्टेंट मिलते हैं, अभी अभी सेवा की और अभी भी मिला खुशी। नेक्स्ट उमंग उत्साह। नेक्स्ट संतुष्टता, दुआएं। और प्रत्यक्ष फल आशीर्वाद, बाप की आशीर्वाद, परिवार की आशीर्वाद, उस आत्मा की आशीर्वाद। जैसे बाहर से कोई दूसरा व्यक्ति आया हुआ है, बाहर के कॉन्फ्रेंस में, विंग्स में, कहीं ना कहीं आया हुआ है और उसको कोई साधन नहीं है जाने का और हमने उसकी मदद कर दी, उस समय तो बहुत दुआएं देगा। उसे कुछ चाहिए था और हमने उसको आधी रात को दे दिया, कोई बीमार हो गया हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया या कोई मदद कर दी। हमारे लिए तो छोटा सा काम है पर उसके लिए बहुत बड़ी बात है वो, क्योंकि उसके लिए अनजाना सा देश है ये। तो सेवा करते ही क्या मिलता है? खुशी। सेवा करते ही दुआ है, सेवा करते ही संतुष्टता, सेवा करते ही आशीर्वाद, सेवा करते ही प्यार भी मिल जाता है उस आत्मा से, सेवा करते ही बोल दिया सहयोग उससे हमको पर इस अपेक्षा से ना करना, और प्रेरणा और वैल्यूज, इंस्टेंट रिजल्ट, वैल्यूज हमारे अंदर कुछ ना कुछ धारण हो जाती है, दूसरों की मदद करने की ये जो भाव है अपने अंदर स्वतः ही आ जाता है। जितने दिव्य गुण हैं 36 में से 3-4 स्वतः ही अंदर घुस जाएंगे, कौन से वो हमें भी नहीं पता चलेंगे, उसका बाद में रिसर्च करना या दूसरे बताएंगे तुम में ये है, आनंद, अतीन्द्रिय सुख, तो ये सारी चीजें हो जाती। तो बाबा ने पूछा प्रत्यक्ष फल कितना मिला है या कितने बने हो, एक दूसरा है सीजन का फल। सीजन का फल अर्थात साल में एक ही बार, सीजन का फल अर्थात कभी कभी साल, सीजन का फल अर्थात एक अव्यक्त वाणी है 2012 की जिसमें डबल विदेशियों से मुलाकात, बाबा ने कहा है ये प्रभु मिलन का सीजन चल रहा है, मौसम चल रहा है, ये प्रभु मिलन का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में जो भी फल निकल रहे हैं वो सीजन के फल है। तो हम भी इसी मौसम में निकले हैं। एक दूसरी अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने कहा यह विजय का मौसम है। कितना अच्छा शब्द है, ये कौन सा मौसम है, विजय का मौसम है। तो जो विजय के मौसम में निकले हैं उनकी विजय निश्चित और सदा विजय, जो प्रभु मिलन के मौसम में निकले हैं ऐसे जो बीज, जो अंकुर बने और पल्लव बने और अंकुरित और पल्लवित हुए, ऐसे जो पौधे हैं वो हरे भरे विश्व को छाया और फल देंगे, ऐसे सीजन के फल। तीसरा है कच्चे, कच्चे फलों को कौन सी चीजों की आवश्यकता है, मसालों की आवश्यकता है, कौन से मसाले, विशेषता के मसाले, थोड़े विशेषता के मसाले डालो फिर उसके बाद में वो पकते हैं। क्या मसाले डालने से कोई फल पकता है, न्यू कॉन्सेप्ट बाबा ने मुरली में कहा है, फिर पकेंगे, फिर वो अमूल्य बनेगा, विशेषता के मसाले डालो। तो विशेषता के क्या मसाले हो सकते हैं, ये चिंतन का विषय है। एक एक मुरली से चिंतन के टॉपिक्स और विषय निकालना है जिसमें बुद्धि को बिजी रखना है, तो ही बुद्धि श्रेष्ठ चिंतन में रहेगी, नहीं तो व्यर्थ का अंबार लगा हुआ है। कौन से मसाले, कैसे मसाले सोचना। तो कच्चे अर्थात जिनमें एडिशन की आवश्यकता है, पके हुए अर्थात डायरेक्ट पालना जो ले रहे हैं, या इनके इसके दो अर्थ है, एक तो वो जिन्होंने ली थी और वो जो अब भी ले रहे हैं, डायरेक्ट भगवान से जो पालना ले रहे हैं वो है पके हुए। अगला है रस वाले फल। कौन सा रस, सर्व प्राप्तियों का रस जिनके पास है, जिनको ये अनुभव है कि हमने सब पा लिया, एक गहरा संतुष्टता का भाव है कि अब जो पा रहे हैं वो ऊपर ऊपर का है, पर जो मेन है, जो मूलभूत है, बुनियाद में हमने सब पा लिया है जो पाना चाहिए था। अब जो पाया जा रहा है ये जस्ट एडिशन है, पर मुख्य हमने पा लिया है, इसका परम संतोष। तो रस वाले फल। दूसरा रूप वाले फल। कौन से है रूप वाले, ब्रह्मा बाप समान, प्रत्यक्ष कर बाप को प्रत्यक्ष करने का रूप, यह है रूप। रंग, संग में रहने का रंग, जो सदा उसके संग में रहे। तो बाबा ने कहा इन सब में मैं कौन हूं, इसकी चेकिंग बाप कर रहे थे, ये चार्ट बाबा देख रहे थे, याद का चार्ट, सेवा का चार्ट, बाप समान कितने बने ये चार्ट, और इन सभी फलों में से तुम कौन से फल हो, मैं कौन सा फल हूं वो। तो ये सबसे पहली पॉइंट चार्ट। दूसरा था ब्रह्मा बाप की आश, जिससे हमने क्लास की शुरुआत की। क्या आश है? रूहानी चित्रकार बन जाओ, बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन जाओ, बाप समान कर्मयोगी बन जाओ, कर्म दर्पण हो, कर्म से साक्षात हो आत्माओं को बाप का, कर्म प्रत्यक्ष करे, कर्म रूहानियत को सिद्ध करे। आगे कहा एक जगह, वो लोग मुख का भाषण करते हो और तुम कर्म का, दूसरा नयन का, तीसरा मस्तक का। तुम्हारा है नयन का, मस्तक का और कर्म का भाषण, उनका है मुख का भाषण। उनसे सीखना है वो तो सीख भले लो, परंतु कर्म का भाषण केवल तुम कर सकते हो, वो नहीं। तो बाप की आशय फॉलो करना। अब फॉलो करने का क्या अर्थ है? फॉलो करना अर्थात जैसे यहां टांग पे टांग चढ़ाकर बैठ गए, ये फॉलो करना हो गया? धोती पहन लिया, ये फॉलो करना हो गया? कैसे फॉलो करना? वो पहली मछली, दूसरी मछली भी कूद गई थी पर फिर भी तो झोली के अंदर चली गई, और तीसरी तो फॉलोअर की भी फॉलोअर थी, वो तो फंस गई। उसको फॉलो करना नहीं कहा जाता है। फॉलो करना अर्थात जो उसकी आंतरिक साधना थी वो करना। बाहरी स्वरूप बहुत आसान है फॉलो करना। फॉलो के भी तीन अर्थ है, एक है अनुकरण, कॉपी करना, एक है अनुसरण, जैसी चलन उसकी थी वैसे चलना, एक है अनुगमन, जिस मार्ग पर वो चला उसके नक्शे कदम पर उस मार्ग पर चलना, गमन। उसके लिए उसका जीवन स्टडी करना पड़ेगा, उसके लिए उसके जीवन में क्या विशेषताएं थी गहराई से स्टडी करना पड़ेगा। केवल फॉलो फादर और फॉलो फादर के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, केवल कहते रहने से कुछ नहीं होगा, थियोरी से कुछ नहीं होगा, उसका फोटो लगाकर उसकी पूजा करने से कुछ नहीं होगा। फोटो लगाना अर्थात उससे मुक्ति का मार्ग है कि तुम वही रहो, हम पूजा करेंगे, बस हमें वैसा बनना है, ये भाव समाप्त। महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा था मेरी पूजा करो, सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। देशों में एक मंदिर में 1000 मूर्तियां हैं बुद्ध की, विदेश के किसी एक मंदिर में। महात्मा बुद्ध ने कहा था किसी की भी शरण में मत जाना, लोगों ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, उसी के शरण में चले गए। उन्होंने कहा किसी देवताओं को नहीं मानना, लोगों ने कहा आप ही अवतार हो, भगवान बुद्ध, उसी को भगवान बना दिया। अपना प्रकाश स्वयं बनना, अपने दीपक स्वयं बनना, प्रेरणा जरूर लेना परंतु स्वयं स्वयं को मेहनत करनी है। फॉलो फादर का जो विकृत अर्थ बना दिया है वैसा फॉलो फादर करना नहीं है। वास्तव में फॉलो करना अर्थात कौन कह रहा है फॉलो करो? किसी देह, संसार के किसी देहधारी को फॉलो नहीं कर रहे, जो सृष्टि का आदि पिता है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसके जीवन को बारीकी से समझना होगा। तो ये होगा दूसरा पॉइंट। पहला चार्ट, चार प्रकार के चार्ट। दूसरा ब्रह्मा बाप की आश, आश है ये सब करो। स्पिरिचुअल पेंटर, स्पिरिचुअल आर्टिस्ट, स्पिरिचुअल कलाकार, रूहानी चित्रकार बन जाओ। वो चित्रकार कागज पर चित्र निकालते हैं, तुम्हें कहां चित्र निकालनी है? मनुष्य के हृदय में चित्र निकालना है बाप का, कितना बड़ा काम है। उनके हृदय में अंकित हो जाए परमात्मा प्रेम, उनके हृदय में छप जाए ईश्वरीय प्रेम, प्रभु के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाए, विषयों के प्रति विराग, इस विकारी वायुमंडल में रहते हुए प्यूरिटी के लिए पावर प्रेम बढ़ जाए। आज सुबह की साकार मुरली बाप का ऑर्डिनेंस है क्या? बाप का ऑर्डिनेंस है क्या सुबह की साकार मुरली? विष का धंधा बंद करो, सुना ना सुबह, विष का धंधा बंद करो, ऑर्डिनेंस, रिक्वेस्ट नहीं, ओपिनियन नहीं, मत नहीं, एडवाइस नहीं, देखो करना हो तो करो नहीं तो देख लो, मैं तो बता रहा हूं, ऑर्डर भी नहीं, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस उसको क्या कहेंगे वो, नहीं नहीं वो नहीं, वो इस्लाम में क्या निकलता है, फतवा फरमान तो छोटा है, उससे भी ऊपर, हुक्म से ऊपर फतवा जारी किया है, विकार का धंधा, विष का धंधा बंद करो। जब विषयों के प्रति आत्माओं के मन में विराग आ जाएगा, व्यर्थ लगने लगेगा विषय का सुख, काम का सुख, मिट्टी के खेल लगने लगेंगे सारे देह, और सच्चा हृदय में प्रेम प्रकट होगा, ऐसे चित्रकार तुम बन जाओ, ऐसे स्पिरिचुअल आर्टिस्ट, फनकार, कलाकार, पेंटर। ये दूसरा। तीसरा, ब्रह्मा बाप का महामंत्र कौन सा? ना, तुरंत दान महापुण्य, तुरंत करना, अभी अभी करना, टाल मटोल न करना, आज का काम कल पर ना छोड़ना, अभी के अभी कर देना जो करना है। महाभारत में दृष्टांत है, भीम खड़ा है, युधिष्ठिर खड़ा है, कोई याचक आता है, कुछ मांगता है, युधिष्ठिर कहता है मैं आज नहीं तुमको कल दूंगा, भीम जोर जोर से हंसने लगता है, युधिष्ठिर पूछता है तुम क्यों हंसते हो, क्यों हंसते हो, क्योंकि तुमने काल को जीत लिया, इसका मतलब तुम श्योर हो, इसका मतलब तुम्हें आश्वासन है, तुम निश्चिंत हो कि कल तक तुम जियोगे, जब तुमने कहा मैं कल दूंगा, जैसे तुम्हें लग रहा है कि मैं रात में जिंदा रहूंगा, जैसे काल बीच में नहीं आएगा, अब के अब करना। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा विलन प्रोक्रेस्टिनेशन को कहा जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन अर्थात टाल मटोल करना, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम, समय को चुरा लेता है, आज का काम कल, इसके लिए तुरंत दान, अभी के अभी कर दो, अभी के अभी काम करो, कोई भी काम को दूसरे दिन पर नहीं टालना। यह बहुत बड़ा टॉपिक है प्रोक्रेस्टिनेशन, कारण क्यों है, क्या है इसके, बहुत सारे कारण दिए हुए हैं, मैनेज कैसे इससे मुक्त हो, जिसको ये याद है, जिस जो आदत सी बन गई है, आज जो करना है वो कल करेंगे, ये जो काम सबसे इंपॉर्टेंट है इसको आज नहीं कल, कल करते 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 काल की का ग्रास बन जाता है। टाइम मैनेजमेंट हर एक ब्राह्मण आत्मा को सीखना है, कैसे अभी के काम अभी करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसको पहले करना, जो सबसे डिफिकल्ट काम है उसको भी पहले कर लेना, ताकि आसान काम बाद में हो जाए। मनुष्य का मन कहता है पहले आसान आसान कर लो, लास्ट में डिफिकल्ट वाला करेंगे, और वो होता ही नहीं है। दिनचर्या में हम पहले आसान आसान कर लेते हैं और लास्ट में डिफिकल्ट वाला रह जाता है, डिफिकल्ट वाला है चिंतन, वो बाद में, बाकी सेवाएं तुरंत कर लो सारी, उसको ढकेलते 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 रात हो जाती है और वो रह जाता है, और मुरली चली जाती है, दूसरे दिन नई मुरली आ जाती है। तो अब का कार्य अब करना। वो एक हंसी की कहानी सुनाते हैं, वो कछुआ, कछुआ होता है ना, कछुआ मदर कछुआ, डैडी कछुआ और उनका बेबी कछुआ, वो पिकनिक के लिए जाते हैं और वहाँ जाते हैं तो एकदम से मौसम थोड़ा खराब होने लगता है, तो बारिश आने को होती है, तो मदर टर्टल अपने बेबी टर्टल को कहती है, अरे हम छाता भूल के जाओ, जाके लेके आओ। पर वो बहुत ही लेजी रहता है, आलसी रहता है, हमेशा टाल मटोल करने वाला रहता है। वो कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। वो कहते जाओ जाओ जाओ, नहीं तो बारिश आ जाएगी। वो कहता है एक शर्त पर जाऊंगा, अगर आप दोनों, अपने मम्मी पापा को कहता है कि मेरे आने तक, जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक खाना नहीं खाना, लंच मेरे आने के बाद ही खाना। वो कहते हाँ हाँ भाई जाओ, छाता लेके आओ, नहीं तो बारिश होने वाली है। तो वो चला जाता है। ये लोग इंतजार करते, एक घंटा हो गया, दो घंटा हो गया, तीन घंटा हो गया, चार घंटा हो गया, शाम हो गई, अब तक नहीं आया। तो वो मम्मी कहती है कि अभी पता नहीं है कब आएगा, चलो हम खाना खा लेते तब तक। तो वो पीछे से एकदम कूद के आता है, मुझे पता था, मैं यही देख रहा था, मैं यही बैठकर इंतजार कर रहा था कि तुम लोग खाना खा ही लोगे, इसलिए मैं गया ही नहीं। क्योंकि मुझे पता था तुम लोग खाओगे। तुरंत काम करना, एक लिस्ट रोज सुबह बनानी है, प्रायोरिटाइज। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है वो सुबह सुबह कर लेना, जो सबसे कठिन है वो उसको पहले कर लेना। पेंडिंग 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 रखते जाओ तो बहुत बड़ा काम हो जाता है बाद में। जीवन के जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन से है उसकी लिस्ट निकालनी है, और जिसको हमने पेंडिंग रखा है ऐसे वो कौन से संबंध है स्टिल अनरिपेयर्ड, ऐसे कौन से रिलेशनशिप्स है जिसमें दरारें पड़ी है और अब तक ठीक नहीं किए, ऐसे कौन से संबंध है जिसमें जेलसी है, विकार है, ईर्ष्या द्वेष है, घृणा है, नफरत है, कड़वाहट है, वो संबंध ऐसा ही पड़ा हुआ है और उसको ढकेलते जा रहे हैं, जहर बन रहा है अंदर, चेतना को विषाक्त कर रहा है। पहले इस कार्य को ठीक करना है। कौन सी वो आदत है, कौन सा वो संस्कार है, सब कुछ करने के बाद भी हो जाता नहीं, क्या किया जाए उसके लिए, वो काम स्टिल पेंडिंग, उसको पहले ठीक करना। तो तुरंत दान महापुण्य, अभी के अभी करना, अभी अभी करेंगे, सोचेंगे करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे। ब्रह्मा बाप का ये संस्कार न था, नहीं था, अभी का संस्कार था। तो इस संस्कार को धारण करना, ये है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है मधुबन निवासियों से मुलाकात। क्या कहा मधुबन निवासियों को? मधुबन क्या है? शोकेस। और मधुबन निवासी क्या है? शो पीस। क्या टाइटल दिए मधुबन निवासियों को बाबा ने? परिवार का प्रत्यक्ष सैंपल, कर्मयोगी का प्रत्यक्ष, कर्मयोगी का सैंपल, अथक सेवाधारी का सैंपल, वरदानी स्वरूप का सैंपल। संसार की आत्मा है जो प्रजा बनने वाली है, वो यहां आ रही है और वरदान का अनुभव कर रही है। जो यहां रहती है उन्हें वरदानी स्वरूप में रहना है। भागवत का उदाहरण दिया, महत्तम। वास्तव में शब्द वो जो है वो है महात्म्य, महात्म्य, पर बाबा ने दूसरा शब्द प्रयोग किया है, महत्तम, ऐसे कुछ शब्द प्रयोग किया है महत्तम। पर जो शब्द भक्ति मार्ग में कहा जाता है उसे कहा जाता है महात्म्य। उसका महत्व भागवत से भी ज्यादा है। जिन्होंने भागवत सुनी होगी वो भागवत की ही आरती होती है, जय जय आरती भागवत भगवान की। भगवान कृष्ण वो अलग, वो उसके अंदर, पर उसके भी पहले भागवत ही भगवान है, वो जो ग्रंथ है वही भगवान है। तो आरती भागवत भगवान की, उसी की महिमा, इसकी महिमा भागवत से भी ज्यादा है। उसी तरह मधुबन से भी ज्यादा मधुबन निवासियों की महिमा है। मधुबन की महिमा बाद में, पहले मधुबन निवासियों की महिमा। तो मधुबन निवासी अर्थात कहां बैठे हुए, तख्त नशीन, तख्त से अगर नीचे आ गए तो ताज नहीं मिलेगा, तख्त से अगर नीचे आ गए तो अपसेट, छोटी छोटी बातों में अपसेट, नाराज, उदास, क्योंकि परिस्थितियां चाहे यहां या संसार में सब जगह हलचल वाली है। जब अपने समान से, जब अपने चिंतन की धारा से नीचे उतरती है आत्मा, डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि फिर प्रभाव में आती है दूसरों के, डिस्टर्बेंस चालू होता है। तो मधुबन निवासी अर्थात सदा तख्त नशीन, मधुबन निवासी अर्थात सदा ताजधारी, मधुबन अर्थात यहां पर सभी को वरदान देने वाले, जो प्रजा बनने वाले हैं उनको भी और जो राजा बनने वाले हैं उनको भी, दोनों को वरदान देने वाली ये भूमि है। तो ऐसे निरंतर अपने आप को क्या समझना, मधुबन निवासी। और मधुबन जैसे कभी कहा था, मधुबन अर्थात किसी जमीन का नाम नहीं है, मधुबन अर्थात किसी केवल ज्योग्राफिकल डेफिनेशन नहीं है, भौगोलिक परिभाषा नहीं है कि ये है माउंट अबू और ये है मधुबन। ये एक आयाम है। मधुबन अर्थात हर वो स्थान जहां पर आत्मा पवित्रता का पालन करती है मधुबन है, हर वो स्थान जहां परमात्मा की सेवा होती है मधुबन, हर वो स्थान जहां बाबा की के ज्ञान का चिंतन, मनन, अध्ययन, पठन, पाठन होता है वो मधुबन है। हर वो स्थान जहां पर धारणाएं हैं ईश्वरीय, मर्यादाएं हैं, कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट, वो सब कुछ है, वो हर स्थान मधुबन है। मधुबन केवल एक छोटी सी परिभाषा नहीं है, व्यापक है। तो निरंतर मधुबन निवासी समझना अर्थात निरंतर हृदय में पवित्रता, निरंतर ज्ञान का सिमरन चिंतन, निरंतर सेवाओं में रत, ऐसी मानसिक दशा स्थिति का नाम है मधुबन। तो मधुबन निवासियों से मुलाकात। अगला पॉइंट है आदि रत्नों से मुलाकात। क्या कहा आदि रत्नों को, सोने का हिरन, उड़ता पंछी, सोने का पिंजड़ा। हद की प्राप्तियां है ये पिंजड़ा है। हद की प्राप्ति अर्थात कौन कौन सी, हद की प्राप्तियां कौन कौन सी, नाम मान शान छोड़कर, नाम मान शान छोड़कर, हद की प्राप्त, हद की प्राप्तियां या हद के आकर्षण। बाबा ने कहा अंगत समान रहो, अंगत का एक उदाहरण दिया, उड़ता पंछी का उदाहरण दिया, नीचे नहीं फंस जाना, किसी से आकर्षित नहीं हो जाना। मनुष्य के आकर्षण में, मनुष्य के संबंध में बहुत डिस्टर्बेंस है। दो व्यक्तियों का आपस में संबंध है, ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे को फोन करता है, उसने फोन नहीं उठाया, डिस्टर्बेंस। एक व्यक्ति दूसरे को तुरंत बात करनी है पर फोन स्विच ऑफ आ रहा है, डिस्टर्बेंस। बेचैनी, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही है दूसरे व्यक्ति से, डिस्टर्बेंस। और चाहे कोई कितना भी संतुष्ट करे एक दूसरे को, कभी भी कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर सकता, चाहे अपना जीवन लगा दे तो भी सामने वाला तृप्त ही रहेगा। कोई पति ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी पत्नी से पूर्ण संतुष्ट हूं, ना ही कोई पत्नी कभी कहती है मैंने अपने पति से मैं पूर्ण संतुष्ट हूं। कहने के लिए और दिखावे के लिए भले कह दे, पर अंदर से दोनों को ही पता है जो भयंकर डिस्टर्बेंस है। मनुष्य मनुष्य की प्यास नहीं बुझा पाता क्योंकि आत्मा अनंत है, अनंत की प्यास केवल अनंत ही बुझा सकता है। इसलिए आदि रत्न अर्थात उड़ता पंछी, कहीं पर भी फंसने वाले नहीं, किसी भी मनुष्य में, किसी भी देहधारी में, किसी भी प्रेम के संबंधों में सांसारिक, क्योंकि वो नीचे घसीटते हैं आत्मा को। तो आदि रत्न, आदि रत्नों के बाद फिर बाबा ने कहा कुमारों से या युवा से मुलाकात, यहां तो मुरली पूरी होती है, ये जो मुरली है किसी और मुरली से लिया हुआ भाग है। इसमें तीन पॉइंट्स है, एक तो भाषण, कर्म का भाषण, मुख का भाषण नहीं करना है तुम्हें, नयन का, मस्तक का, और सबसे महत्वपूर्ण है नयन का भाषण। दृष्टि से क्या क्या होता है? दृष्टि से पांच चीजें होती है, पांच प्रकार की सेवाएं, 5S। दृष्टि से जो सेवाएं होती है, सबसे पहले दृष्टि से साक्षात्कार करा सकते हो। किसी को भी साक्षात्कार कैसे कराया जाता है? दृष्टि से कराया सकते हैं, मस्तक से भी हो सकता है, हाथों से भी, परंतु मुख्य है आंख, नयन, दृष्टि, लोचन, साक्षात्कार। दूसरा है शक्तिपात, आंखों से शक्ति दीक्षा, नयन दीक्षा जिसको कहते हैं। तीन प्रकार की दीक्षा है, एक नयन दीक्षा, एक स्पर्श दीक्षा, एक मंत्र दीक्षा। किसी को सामने बिठाकर आंखों से शक्तिपात कर देना, शक्ति ट्रांसफर, स्पिरिचुअल ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी। दूसरा हाथ लगा के, स्पर्श करके, किसी को हाथ लगा दिया और एनर्जी ट्रांसफर, दैट इज नोन एज स्पर्श दीक्षा। तीसरी है मंत्र दीक्षा, किसी के कान में मंत्र फूंक देना। ये तीन प्रकार की दीक्षा है भक्ति मार्ग में। तो दूसरा आंखों से जो होता है वो है आत्मा को शक्तिपात, पावर भर देना। कोई असहाय कमजोर आत्मा है सामने आ जाए, वो ज्ञान सुनने की इतनी शक्ति उसमें नहीं है, कहां से वो ज्ञान सुनेगी? पावरफुल शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर उसे सीधा शक्ति दे देना, ये भी कार्य हो सकता है। तीसरा है सकाश, सकाश अर्थात वाइब्रेशंस, प्योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस। दृष्टि से सकाश दी जा सकती है आत्माओं को। सकाश बड़ा विषय है, भिन्न भिन्न प्रकार की सकाश। चौथा है, चौथा क्या? स्नेह, वो तो है ही। सोल कॉन्शियस एंड सुप्रीम सोल कॉन्शियस बनाया जा सकता है आत्माओं को। बाबा ने कहा है मुरलियों में, जब तुम किसी को आत्मा देखते हो तो क्या करते हो? करंट देते हो। केवल दृष्टि से जो एकदम देहभानी, देहाभिमान में है, उसको दृष्टि द्वारा ही आत्माभिमानी बनाया जा सकता है। तो सोल कॉन्शियस बना देना, किससे? दृष्टि से। और पांचवा, और एक है, नहीं, जो प्रॉपर दृष्टि से होता है, जो मुरलियों में आता है। वैसे तो गिना या तो बहुत सारा हो सकता है, ये भी, वो भी, ऐसे भी, वैसे भी। सृष्टि से, दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन, एस, पांचवा एस है। साक्षात्कार करा सकते हो, सकाश दे सकते हो, शक्तिपात कर सकते हो, सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो, सोल कॉन्शियस और सुप्रीम सोल कॉन्शियस आत्मा को बना सकते हो। दृष्टि, सृष्टि में सब आ गया, दृष्टि से वृत्ति, सृष्टि, सब कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो बाबा कहते हैं दृष्टि का भाषण दो, नयन का भाषण, और एक है मस्तक का भाषण। मस्तक का भाषण अर्थात मस्तक बोर्ड बन जाए, कई अव्यक्त मुरलियों में आया, यहां बोर्ड बन जाए, आत्माओं को यहां साक्षात्कार हो। जैसे दिखाया कृष्ण ने आंख को, मुंह खोला और सारा ब्रह्मांड उसमें दिखने लगा उसकी मां को, वैसे तुम मस्तक द्वारा साक्षात्कार कराओ। तो भाषण केवल, स्पीच केवल मुख का ना हो, दृष्टि का हो, मस्तक का हो, और कर्म का भाषण हो। तुम्हारा कर्म सबसे बड़ा भाषण है। टीचर से मुलाकात, बाबा ने कहा है वो जो संसार के एक्टर्स होते क्या कर सकते हैं? हंसा सकते और रुला सकते हैं, पर आत्मा अभिमानी नहीं बना सकते, परमात्मा अभिमानी नहीं बना सकते। फिल्म के एक्टर्स हंसाएंगे, रुलाएंगे, कॉमेडियन बन जाएंगे, ट्रेजेडी करेंगे, ऑडियंस को रुला देंगे, पर ऑडियंस आत्मा अभिमानी बन जाए ऐसे होगा क्या? वो केवल तुम कर सकते हो। तो कर्म का भाषण। नेक्स्ट है रूहानी ताबीज, कौन सा है? यहां है वो, रिगार्ड देना, ये रिकॉर्ड रखो तो सफलता का रिकॉर्ड होगा। रिगार्ड कैसे देंगे दूसरों को, वो लास्ट पॉइंट है, सातवां वो पॉइंट है। मंत्र, कौन सा मंत्र? पहले आपका मंत्र, पहले आप मुख से कहते पर अंदर से रहता है, पहले मैं, यथार्थ रीति से पहले मैं को समाप्त करो, वो सातवां पॉइंट। उसके पहले है रूहानी ताबीज अर्थात रिगार्ड देना। कैसे देंगे एक दूसरे को रिगार्ड, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। विशेषताओं को देखकर, प्रेस करके और सहयोग देकर और सजेशन को रिगार्ड देके। और रिगार्ड कैसे देंगे दूसरों को, सम्मान रिस्पेक्ट कैसे देंगे माताएं, कैसे रिगार्ड देंगे दूसरों को? बाबा ने कहा ये रूहानी ताबीज है, इस ताबीज को पहनो। ये ताबीज और मंत्र हो तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। हाउ टू गिव रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट टू अदर्स, हाँ? ये जो शब्द है बहुत सुंदर शब्द है, इसमें सात शब्द है। आर, रिगार्ड, रिस्पेक्ट। आर फॉर रीच आउट, रीच आउट मतलब किसी की जाकर मदद करना, रीच आउट इंग्लिश शब्द है। रीच आउट अर्थात अपना काम छोड़कर किसी की मदद करना, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर किसी की मदद करना, असिस्टेंस देना, मदद करना, सहयोग देना, यह है रिगार्ड देना। खाली कहना कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं और उसको जरूरत है वो देना ही नहीं, यह रिगार्ड देना नहीं है। रिगार्ड देना अर्थात रीच आउट। रिस्पेक्ट, आर ई, ई अर्थात एनकरेज, उस व्यक्ति को एनकरेज करना, यह वास्तविक उसके लिए रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है। कोई दुखी हो गया, उदास हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, उसको एनकरेज करना, फिर से पुरुषार्थ में लाना, क्योंकि ये सब तो होते रहेगा अप एंड डाउन। यहां ऐसा हो नहीं सकता कि कोई कुछ ना कहे, होगा? कांटे लेकर बैठे, कांटों का जंगल में मुरली क्लास से निकलते ही कांटे हैं, चुभेंगे, गेट से ही कांटे, दरवाजे पर ही कांटे, निकले बाहर कांटे चुभना चालू। कांटों का जंगल है तो कांटे तो चुभेंगे ना, तो एनकरेज, जिसको कांटा चुभा है उसको थोड़ा एनकरेज करो, कांटा निकाल सके तो निकाल दो, बहुत दर्द होता है कांटा चुभता है तो। आर ई एस, एस अर्थात सिंसियर, उस व्यक्ति के साथ सिंसियर रहना, धोखा नहीं करना उसके साथ, ट्रांसपेरेंट रहना, पारदर्शी रहना। उसने अपने जीवन का कोई सीक्रेट हमें बता दिया और हम जाकर सारे संसार को बता के आ गए तो वापस नहीं बताएगा, फिर धोखा हो गया उसके साथ, विश्वासघात हो गया। जो भी सीक्रेट दूसरे हमें सुनाए वो अपने तक ही रहे। आर ई एस, रिस्पेक्ट। पी, पी में दो चीजें हैं, प्रैक्टिस बीइंग नॉन जजमेंटल एंड एक्टिव लिसनिंग। नॉन जजमेंटल, हर एक को जज करने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा घर पे है, उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है या कुछ चाहिए, बहुत डिस्टर्बेंस है बिहेवियर का, माँ बाप से कभी नहीं बताता है, वो जो काउंसलर होता है ना उससे सब बातें बताता है, क्योंकि काउंसलर पहले से ही उसके प्री फॉर्म्ड ओपिनियंस नहीं है कि ये ऐसा ही है, ये तो शरारती है, वो एकदम ऐसे देखता है, नॉन जजमेंटल। निर्णय नहीं देता है कोई कि ये इसकी तो आदत ही ऐसी है, तो झूठी बोल रहा है, ये जो बोल रहा है ना झूठी बोलता है, ऐसी आदत नहीं है उसकी, नॉन जजमेंटल। तो रिश्तों में नॉन जजमेंटल और रिश्तों में एक्टिव लिसनिंग, ये है रिस्पेक्ट देना। पी, उसके बाद है ई, ई फॉर एम्पथाइज, एम्पथी अर्थात समानुभूति। एक होता है सिंपति, सहानुभूति, उसके भी ऊपर है एम्पथी, एम्पथी अर्थात उसको जो लग रहा है वैसा फील करना और फिर उसके लिए कुछ करना। एक है मर्सी, एक है कंपैशन, एक है सिंपति, एक है एम्पथी। एम्पथी बहुत ऊंचा है, समानुभूति, जो उसको दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, उसके दर्द पीड़ा को खुद फील करना, केवल फील नहीं करना, उसके साथ रोते नहीं बैठना, पर उसके लिए कुछ एक्शन लेना, मदद करना, दैट इज नोन एज एम्पथाइज, एम्पथी। आर ई एस पी ई सी, सी फॉर कॉन्ग्रेचुलेट, जब भी उसको कोई सफलता मिले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना। जब ईर्ष्या होती है तब हम कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करते, जब किसी व्यक्ति से ईर्ष्या है उसका ज्ञान भी ठीक नहीं लगता है, उसका योग भी खराब लगता है, उसके ज्ञान सुनाने की जो पद्धति है वो गलत है, ऐसा हम कहते हैं। उसका ज्ञान योग धारणा सेवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, उसमें खाली भाषण ठोकते, धारणा तो जीरो। उसका योग कई बार सोते हुए देखा है, तो ये रिस्पेक्ट नहीं है। तो कांग्रेचुलेट, और लास्ट टी, टी फॉर थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, उसके प्रति धन्यवाद का भाव, ये है वास्तव में रिस्पेक्ट देना, अर्थात तो रूहानी ताबीज पहनना। एक पैराग्राफ और है, वो कल कहीं और लेंगे पांडव भवन में। तो इतनी सात बातें हैं अव्यक्त मुरली से। सबसे पहली बात बताई चार्ट, ये चार्ट चेक कर रहे हैं बाबा, हमें अपना चार्ट खुद चेक करना है, मैं कहां हूं। दूसरा पॉइंट बताया ब्रह्मा बाबा की ये आश है। तीसरा बताया तुरंदान महापुण्य, ब्रह्मा बाप का महापुण्य। चौथा बताया मधुबन, मधुबन की बाबा कितनी महिमा कर रहे हर मुरली में, उसके ऊपर सोचना है। अगला बताया आदि रत्न, अर्थात उड़ता पंछी, कहीं पर भी नहीं फंसना बीच में, किसी भी देहधारी में फंसे मतलब उड़ना बंद, चाहे पति पत्नी बच्चे कोई भी हो, मित्र संबंधी साथी कोई भी, फंसे मतलब गए, उड़ना बंद हो जाता है। फिर सारा शेयरिंग उस व्यक्ति के साथ चलता है, सारा मैसेजेस इधर से उधर उस व्यक्ति के साथ चलता है, उधर मैसेजेस भेजना बंद हो जाता है। नेक्स्ट आदि रत्न हो गया, और फिर लास्ट थ्री युवकों से, युवावक से मुलाकात। पहला कर्म का भाषण, दूसरा रूहानी ताबीज, और लास्ट पहले आप। इसकी आप एक लिस्ट बनानी है, पहले आप कहां कहां करना है ब्राह्मण जीवन में, पुरुषार्थ में पहले मैं की एक लिस्ट और पहले आप की एक लिस्ट। पहले आप कहां कहां करेंगे, पहले आप कहां कहां करेंगे, ब्रह्मा भोजन, भोजन की लाइन लगी है पहले आप जाओ, दादी आई है टोली की लाइन लगी है पहले आप जाओ, और सौगात मिल रही है पहले आप ले लो, हम तो यहीं रहने वाले हैं, नहीं मिली तो चलेगा। और किसने दिलीप भाई कहां करेंगे पहले आप, हाँ कोई सबको ही करना है सेवा, तो ले लो तुम लोग ले लो भाई, सबको चाहिए मैं ही करूंगा, और पांडव भवन जाना है। अच्छा अच्छा, तो चलो आप चले जाओ, भट्टी हो रही है चार ही लोग जा सकते हैं, चलो आप चले जाओ, हम यहीं कर लेंगे भट्टी। हाँ माताओं को सीट देने में पहले आप, हाँ कार में या बस में बैठते समय विंडो सीट देने में पहले आप, वो कहता है मुझे उल्टी होती तो तुम बैठ जाओ भाई, या कोई किसी को बैठने में पहले आप, हम खड़े रह के जाएंगे, खड़े रह के जाने का भी अपना आनंद है बस में, मौका देने में और अपॉर्चुनिटी देने में पहले आप, और किसमें, हाँ नहीं वो तो पर किस किस में पहले आप, किस में पहले आप करेंगे प्रभु भाई, किस में पहले आप, भाषण देने में पहले आप दे दो, अब बचा हुआ टाइम अगर होगा तो हम दे देंगे, नहीं मिला तो भी चलेगा गाना किसी को गाना ही है बिल्कुल, तुम गा लो पहले भाई, कविता किसको सबके सामने सुनानी है तुम सुना दो, हमारी तो सुन सुन के लोग बोर हो गए, अब तुम सुनाओ। और टोली खिलाने में हमारी टोली, हमको छोटा आम मिला ये लो हमारा आम ले लो, उसका भी तो असंतोष होता है, सबको बड़े आम मिले हमको, जब हमारा नंबर आया तो एकदम छोटा, मधुबन में भी दुख सबकी इसमें देख रहे आम बड़ा है, तो दूसरे की थाली में ज्यादा ही दिखता है ना, हमारा गुलाब जामुन छोटा इसका बड़ा, इसका असंतोष मिला तो दोनों को पर इसका बड़ा। तो पहले आप में त्याग समाया हुआ है, दे दो कर्ण के गुरु उसके स्वप्न में रात में आते हैं युद्ध से पहले और कहते हैं कर्ण तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो, लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो, विजय दे दो अर्जुन को, तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो, दानवीर कर्ण हो, इसके लिए लेना तुम्हें शोभता नहीं, दे दो। तो ऐसी यह व्यक्त मुरली, इसका चिंतन मनन अध्ययन करते रहना। आज की मुरली के एक हद दो पॉइंट फिर क्लास पूरा करते हैं। तुम यहां हवा खाने नहीं हो। एक अव्यक्त मुरली थी जिसमें बाबा कहा था कि यहां तुम आए हो, यहां की हवा वगैरह खाते हो, यहां से फ्रेश होकर जाते हो, इसके लिए तुम्हें हवा खानी चाहिए। एक अव्यक्त वाणी में ये सब बातें थी। कोई तो हाँ तीर्थ करने नहीं आए हो, पर यह सबसे बड़ा तीर्थ है, तुम तीर्थ यात्री हो, यह भी बोला है। हाँ बाबा बाबा करते रहो तो यही समझो कि ये हम हूबहू शिव बाबा के भंडारी से खाते हैं, ये बाप का है, अर्पण कर दो। हम उसकी निगरानी नहीं, परवरिश के नीचे है, परवरिश के नीचे है, सरपरस्ती के नीचे है, सस्टिनेंस के नीचे है। और हाँ बहुत मीठा बनो, हर सेकंड नवीनता का अनुभव करो, हर सेकंड नवीन, हर दिन नया, हर रोज नया, हर अमृत वेला नया, हर योग नवा, हर सेवा नई, हर संबंध नया, हर पल नया, सब कुछ नया नया, चलना फिरना उठना बैठना नया नया हो, पुराना सब कुछ समाप्त, कड़वापन को हटा दो। और नए घर में वो सतयुग त्रेता ईश्वर का घर है, बाप टीचर सदगुरु तीनों इंजिन। और भगवान क्या कर सकता है, क्या समझाना, और अर्पण करके फिर खाना। तो इस तरह से मुरली की ना तो रोज की मुरली से कुछ धारणाओं की पॉइंट्स निकालनी है, मनन करना, चिंतन करना। अच्छा, ओम शांति।